आहान और चाहत के एक्सीडेंट को पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। आहान पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, जबकि चाहत की चोटें अभी ठीक नहीं हुई थीं। ऊपर से उसकी डिलीवरी भी हुई थी। पूरे एक हफ्ते बाद चाहत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। आहान उसके साथ था। इस एक हफ्ते में आहान को चाहत से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। साथ आने पर अचानक चाहत ने आहान से कुछ बातों के बारे में पूछा जो उसे राजवीर से पता चली थी। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने चाहत को पहचान लिया था। आहान के कोई जवाब न देने पर चाहत ने फिर से पूछा, आहान आपने बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं क्या? आहान चाहत की तरफ पलटा और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत वीक है डॉल, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि पार्क में जो लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट करता था वो मैं था? चाहत के दिमाग में ज्यादातर यादें धुंधली हो चुकी थीं। ऊपर से उस वक्त वो काफी छोटी भी थी। चाहत सोचने की कोशिश कर रही थी, कुछ न याद आने पर उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। आहान ने गहरी सांस ली और चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, खुद के दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिलहाल तुम्हें खुद का और हमारे बच्चे का ध्यान रखना है। इतना कहकर आहान ने अपने बच्चे को गोद में उठाया। वो उसे काफी गौर से देख रहा था, जिसकी शक्ल काफी हद तक आहान से मिलती थी, बस आंखें चाहत जैसी थीं। चाहत का मूड लाइट करने के लिए आहान ने कहा, अच्छा डॉल, तुमने हमारे बेटे का क्या नाम सोचा है? आजकल कपल्स अपने नाम को जोड़कर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने बच्चे का नाम अलग ही रखना है, चाहत ने जल्दी से कहा। आहान ने चाहत के चेहरे की तरफ देखा जो नाम सोचने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा देखकर आहान की हंसी छूट पड़ी। चाहत ने इतने टाइम में कभी भी आहान को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। उसने हैरानी से पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? मैंने तो कोई जोक नहीं सुनाया। तुम्हारा चेहरा किसी जोक से कम नहीं है, हरकतें अभी भी बच्चे वाली हैं। कौन कहेगा कि तुम एक बच्चे की माँ बन चुकी हो? नाम बाद में सोच लेना। ऐसे मुंह बनाकर नाम सोचने का नहीं कहा था मैंने, आहान ने जवाब दिया। इतना कहकर आहान ने उसके फोरहेड पर किस किया। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। आहान का ये बदला हुआ रूप देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी। ऊपर से आहान की याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। चाहत खोई हुई निगाहों से आहान की तरफ देख रही थी तो आहान ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, क्या सोच रही हो? घर नहीं चलना क्या? हाँ चलना है, लेकिन आप काफी शांत नजर आ रहे हो। आपकी याददाश्त वापस आ गई है। आप पहले की तरह गुस्सा नहीं कर रहे हो, ना ही पहले की तरह रूढ़ हो। पहले आपको इस तरह कभी हंसते हुए नहीं देखा था, तो हैरानी हो रही है, चाहत ने बताया। अगर नहीं देखा है तो अब देखने की आदत डाल लो डॉल, अब से तुम्हें और हमारे बच्चे को मेरा यही नया रूप देखने को मिलेगा, आहान ने जवाब दिया और फिर चाहत के पास आकर उसे हल्के से हग कर लिया। वो दोनों बातें कर रहे थे उतने में शिवानी वहां पहुंच चुकी थी। उसने आहान और चाहत से कहा, चलो डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। आहान तुम सिक्योरिटी का देख लो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तब तक मैं चाहत को नर्स के साथ बाहर लेकर आती हूँ। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर आ गया। उसके दिमाग में चाहत की बातें गूंज रही थी जब उसने ये कहा था कि उसने कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा। जहां अंदर आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसका मूड काफी लाइट था, वहीं बाहर आते ही उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। मेरा गुस्सा और नफरत जिसकी वजह से है ये अब उसी पर उतरेगा, ना कि तुम पर डॉल। मेरे इस गुस्से और अग्रेशन का असर अपने बच्चों पर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। एक बच्चे की जिंदगी में उसके पेरेंट्स के रिलेशन और बिहेवियर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं नहीं चाहता कि बचपन में जो मैंने अकेले झेला था उसका साया भी मेरे बेटे पर पड़े, आहान ही अपने मन में कहा। इतने कम वक्त में ही वो अपने बच्चे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हो गया था। बाहर आते ही आहान ने अपनी गाड़ी की पूरी जांच करवाई। गाड़ी को पूरी तरह चेक करने के बाद आहान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसके पास आकर कहा, सर गाड़ी बिल्कुल फाइन है, मैंने फ्यूल टैंक और बाकी चीजें चेक कर ली हैं। आगे की सिक्योरिटी के लिए आपकी गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां चलेंगी। आहान ने हां में सिर हिलाया। उनकी गाड़ी को आयुष ड्राइव करके ले जाने वाला था। अगले ही पल चाहत, आयुष और शिवानी भी बाहर पहुंच चुके थे। आयुष गाड़ी ड्राइव कर रहा था, शिवानी उसके पास बैठी थी, तो वहीं बैक सीट पर आहान और चाहत थे। बच्चे को आहान ने अपनी गोद में ले रखा था। इतनी सारी सिक्योरिटी देखकर चाहत ने आहान से पूछा, क्या हमारा एक्सीडेंट किसी ने प्लान किया था जो आप सिक्योरिटी का इतना ध्यान रख रहे हैं? मुझे अभी पूरा पता नहीं है, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आहान ने जवाब दिया। हालांकि वो बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी उसकी आवाज से साफ जाहिर था कि इस वक्त उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ है। चाहत ने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल से घर पहुंच चुके थे। आयुष ने घर को चाहत के वेलकम के लिए तैयार करवाया था। श्रद्धा और तनु वहीं पर थी और उसी ने सारी अरेंजमेंट देखी थी। इतना बड़ा वेलकम देखकर चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, साथ ही वो थोड़ी इमोशनल हो रही थी। उसने आहान की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, आज अगर मम्मा यहाँ पर होती तो वो बहुत खुश होती। शिवानी चाहत के पास आई और उसे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ बेटा, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैंने अगर पहले कभी तुमसे सख्ती से बात की हो या किसी चीज की वजह से तुमसे नाराज हो गई हूँ तो मुझे माफ करना। वहाँ का माहौल इमोशनल होते देखकर आयुष ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, यहाँ रोना धोना अलाउड नहीं है। कहा, मैं शाम को पार्टी करने का सोचा था और आप लोग हैं कि यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं। अभी तो हमने बच्चे का नाम तक नहीं सोचा है। आयुष का साथ देते हुए तनु ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले एक हफ्ते में जिसे देखो बात बात पर रोए जा रहा है। भाई अब सब ठीक है तो खुश ना मनाइए। आहान उन सबको रोकना नहीं चाहता था, पर फिर भी हॉस्पिटल से घर आने के बीच चाहत थोड़ी थक चुकी थी। उसने सख्त आवाज में कहा, अब ये पार्टी वगैरह तुम लोग शाम को करना, डॉल को रेस्ट की जरूरत है। कम ऑन यार, तुम आज तो हम सबको कुछ भी करने की छूट दे ही सकते हो। सीधे सीधे कहो ना, अपनी वाइफ को अकेले में ले जाकर उससे बात करनी है, चाहत के थकने का बहाना मत बनाओ, तनु ने मुंह बनाकर कहा। वहां सिर्फ तनु ही थी जो आहान की बात को काटकर उसे कुछ कह सकती थी। बहाना नहीं है, डॉल की हेल्थ के आगे मैं कुछ भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। दूसरी बात, पार्टी में बाहर के लोग अलाउड नहीं होंगे, आहान ने जवाब दिया। उसकी चाहत के लिए कैर सब समझ सकते थे। किस्मत अच्छी थी जो चाहत और उसका बच्चा बच गए थे, वरना वो सब उन दोनों को ही खोने वाले थे। श्रद्धा ने उसके इमोशंस को समझते हुए कहा, ओके डन जीजू, हम लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं होगा और चाहत के आराम करने के बाद ही हम पार्टी करेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों को आने से क्यों मना किया? मैंने कार्तिका को बोल दिया था, अब मुझे कॉल करके उसे मना करना पड़ेगा, आयुष ने मुंह बनाकर कहा। आयुष कार्तिका को कॉल करने को हुआ, तभी आहान उसे रोकते हुए बोला, रहने दो, वो हमारी पार्टी को अटेंड कर सकती है, मुझे उस पर यकीन है। पिछले एक हफ्ते में उसने डॉल का काफी अच्छे से ख्याल भी रखा है। आहान ने कार्तिका को वहां आने की इजाजत दी थी, इसका मतलब साफ था कि उसे कार्तिका पर यकीन था। ये देखकर आयुष को दिल ही दिल में काफी राहत महसूस हुई।
उन सबको वहीं पर छोड़कर आहान चाहत को लेकर अपने बेडरूम में गया। चाहत को प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने अपना रूम नीचे शिफ्ट कर लिया था। कमरे के अंदर आते ही आहान ने चाहत से कहा, मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ चीज देखनी होगी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इंटरकॉम से कॉल कर देना। चाहत ने उसकी बात पर सिर हिलाया, वो जानती थी कि आहन को इस वक्त क्या काम हो सकता है। इतने दिनों तक चाहत के चलते आहन ने खुद को कंट्रोल कर रखा था, वरना अब तक वो इस बात का पता लगा चुका होता कि उनका एक्सीडेंट किसने किया था। आहन कमरे से बाहर निकल कर आया। चाहत अपने कमरे में बिजी थी तो उसके बाकी घर वाले लिविंग रूम में शाम की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। कमरे से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे के भाव सर्द थे। आहन उसी वक्त सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया। वो वहां के गार्ड से तेज आवाज में बोला, मुझे एक हफ्ते पहले की सारी फुटेज देखनी है, क्या यहाँ कोई अनजान आदमी काम करने के लिए आया था? नहीं सर, रेगुलर स्टाफ ही काम कर रहा है, मैं आपको फुटेज निकाल कर दे देता हूँ, गार्ड ने धीमी आवाज में कहा और फिर आहन के बताए काम पर लग गया था। वहीं दूसरी तरफ आयुष ने कार्तिका को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट किया था। इस वक्त वो अपने घर पर थी और तैयार हो रही थी। कार्तिका की छोटे दो भाई और एक बहन थी, उसके अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वो जिस घर में रहती थी वो भी किराए का था, ऊपर से काफी छोटा भी था। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, आज तक इस तरह की किसी पार्टी को अटेंड नहीं किया है, ऊपर से गिफ्ट भी लेकर जाना पड़ेगा, कार्तिका ने परेशान स्वर में कहा। तभी उसके घर का दरवाजा एक झटके में खुला। कार्तिका जल्दी से कमरे से बाहर आई। उसने देखा सामने अक्षरा थी और उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। अक्षरा ने उन बैग्स को वहां लगे पुराने सोफे पर पटकते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास गिफ्ट खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे, इसमें कुछ कपड़े और बच्चों के हिसाब से गिफ्ट है तो तुम इन्हें लेकर जा सकती हो। अक्षरा कार्तिका के बारे में इतना सोच रही थी। ये देखकर कार्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बोली, थैंक यू अक्षु दीदी, अगर मैं आपसे पहले ही मिली होती तो शायद हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। कार्तिका उन गिफ्ट्स को खोलकर देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर अक्षरा ने आंखें रोल की। उसने धीमे से बड़बड़ाकर कहा, सही कहा है किसी ने, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कार्तिका गिफ्ट्स और ड्रेस को देखकर थोड़ी एक्साइटेड हो रही थी। ये सब अक्षरा को थोड़ा इरिटेट कर रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर रही हूँ, पर मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद नहीं जहाँ मेरे पैसे वेस्ट हों। एक बात कान खोलकर सुन लो, उनका विश्वास जीतो, उसके बाद में तुम्हें मेरा बहुत बड़ा काम करना है। कार्तिका ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं पहले की तरह उनकी हर एक खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी, पर आपने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे कौन सा काम करना है। कार्तिका की बात का जवाब देने के बजाय अक्षरा चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। कुछ देर खड़ी रहने के बाद उसने कहा, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उन्हें तुम पर जरा सा भी शक हुआ या मेरा नाम आगे आया तो भूल जाना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता था। इतना कहकर अक्षरा वहां चली गई। वहीं कार्तिका हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। वो आहन और अक्षरा के पास से अनजान थी, ऊपर से अक्षरा ने उसे कुछ बताया भी नहीं था। बाहर निकलते हुए अक्षरा ने अपने बालों को छटकते हुए कहा, तुमने मुझे ठुकराया था ना आहन ओब्रॉय, अब देखो तुम्हें तुम्हारा प्यार खुद ठुकराएगा, मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी।